थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी हम अपने जीवन में नई बातों को सीखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिनों में हम सब देख रहे थे कि प्रभु यीशु ने अधर्मियों के लिए जान दी कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए और वह फिर से जी उठा कि हम बचाए जाएं। हमें शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। प्रभु यीशु ने शरीर में रहकर दुख उठाया था और जो शरीर में दुख उठाता है वह पापों से बचा रहता है और वह अपना शारीरिक जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करता है। मेरे प्रियो, हम व्यर्थ की बातों और पाप में बहुत समय गंवा चुके हैं। हमने मसीह का बपतिस्मा लिया है और हम में उसका स्वभाव है जो सांसारिक लुचपन से दूर रखता है। आज हम अपने अध्ययन में इससे आगे की बातों को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें फिर से यह समय दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए रेडियो के साथ में अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए हैं, पिताजी हमारी प्रार्थना है कि आप उनकी आत्मिक आंखों को, उनके कानों को, उनके हृदय को, उनके विचारों को खोल दें, उन्हें एकाग्रतापन दें, हर एक प्रकार की बाधाओं को आप दूर करें ताकि जब वे आपके वचन को सुने समझ सके और अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय अपने जीवन से निराश हैं, परेशान हैं, बीमारी अवस्था में हैं, किसी न किसी रूप से अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। पिताजी आप उन पर कृपा दृष्टि करें ताकि वे जाने पाएं कि यह शरीर उनका नहीं है, आपका है, आपने बनाया है, ये जीवन आपने उन्हें दिया है और आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनके जीवन को बचाना चाहते हैं, चंगाई और छुटकारा देना चाहते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को आप आशीष दें, आज के वचन से आप हम सब से बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। मेरे प्रियो, इस विषय में पौलुस रोमियो के पत्री 8 अध्याय में बड़ी कठोरता से कहता है, 8:5-6 पद में। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पौलुस कहना क्या चाहता है जब वह कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है? क्या आप उधार से वंचित हो जाते हैं? जी नहीं, इसका अर्थ है आप परमेश्वर की सहभागिता में मृतक हैं। पहला यूहन्ना के पत्र 1:6 में प्रेरित कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। मेरे मित्रों, आप पाप में रहकर परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकते हैं, संगति में नहीं रह सकते हैं। पाप आज मनुष्य को परमेश्वर के वचन से दूर रख रहा है, दूर कर रहा है। बहुत लोग जीवन जीने का छोटा रास्ता खोजते हैं। मसीही जीवन का छोटा रास्ता नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि वह आपको पाप से बचाने के लिए कष्टों का उपयोग करेगा। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हम जीवन को मानकर नहीं चलते हैं, क्योंकि हमने कष्ट उठाया है और परमेश्वर कष्टों द्वारा हमें पाप से दूर रखता है। जी हाँ, यदि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आते हैं तो हम परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते हैं, और यही कारण है कि जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर है और हम पाप नहीं करते, पाप की ओर नहीं बढ़ते हैं। पत्रस आगे देखता है कि जीवन कितना छोटा है। पहला पत्रस 4:3 में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। ध्यान दीजिए, मन फिराव के बाद पुराना जीवन जीना मूर्खता है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रभु यीशु से जुड़ चुके हैं, जुड़ गए हैं। हम संसार के साथ पाप में नहीं जी सकते। हमें परमेश्वर के लिए जीना है। यह एक महान सत्य है। मेरे प्रियो, जीवन बहुत छोटा है और शीघ्र समाप्त होने वाला है। अतः हमें समझना है कि हमें न्याय के लिए उसके समक्ष उपस्थित होना है। वचन में लिखा है, लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा। यहां पत्रस पापों की सूची देता है। मैंने एक दिन एक प्रभु के दास रोड हीवर से पूछा कि बिली संडे की सेवा का भेद क्या है। उसने उत्तर दिया, वह पाप पर उंगली रखकर प्रचार करता है, वह उसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करता है। पत्रस यहां स्पष्ट शब्दों में कहता है कि पाप क्या है। लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, व्यभिचार। अभिलाषाओं में बहुत सी बातें आती है, दैहिक लालसाएं, पियक्कड़पन अर्थात शराब बहुत पीना, शराब पीना और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों को लेना, लीला क्रीड़ा, भोग विलास और मूर्ति पूजा। धर्म शास्त्र में लिखा है कि पैसे का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। आज लालच एक मूर्ति पूजा है। ये सब बातें आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। पत्रस स्पष्ट शब्दों में कहता है और व्यक्त भी करता है कि ये सब बुराइयां हैं। मेरे प्रियो, मुझे शक है कि आज के अनेक प्रचारक पाप के विषय अनिश्चित हैं। मेरी कुछ बातें बेतुकी सी आपको लगती है, परंतु मेरे प्रियो, पाप को परमेश्वर का वचन, मोटे शब्दों में स्पष्ट करता है। पहला पत्रस 4:4 में आगे लिखा हुआ है, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। आप या तो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे या मनुष्य को प्रसन्न करेंगे। यदि आप मनुष्य को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जी हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:18 में प्रभु यीशु कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि संसार आपसे बैर नहीं रखता है तो कोई गंभीर समस्या अवश्य है। डॉक्टर मैगी कहते हैं, 16 वर्ष की आयु में मुझे बैंक की नौकरी मिली और मुझे वचन दिया गया कि अगले वर्ष मुझे, यानी कि अगले वर्ष पक्का कर दिया जाएगा। एक दिन मैं युवाओं की बाइबल सभा में गया जहां मैंने परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया। मैंने बैंक की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया कि बाइबल अध्ययन कर पाऊं, परंतु उन्होंने मुझे पार्ट टाइम नौकरी का प्रस्ताव रख दिया। मैंने देखा कि अब मैं पहले के समान जनमाने नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि मैं सेमिनारी का अध्ययन कर रहा हूं। मेरे साथी मेरा ठट्ठा करते थे क्योंकि वे मेरा पहले का जीवन जानते थे। उस समय मेरे लिए परमेश्वर की सेवा में जाने का निर्णय बहुत कष्टदायी था। मेरे प्रियो, यह एक व्यक्ति की गवाही है। आप मुझे गलत न समझे, मैं पहले नाचने भी जाता था और नृत्य समिति का अध्यक्ष भी हुआ करता था। मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे उनसे संबंध तोड़ लूंगा, अतः मैं नाच में तो गया परंतु अलग खड़ा था और मुझे बड़ा ही विचित्र लग रहा था। वहां एक और मेरा मित्र था जो मुझे जानता था कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं। वह कलिसिया का भी पदाधिकारी था। उसने बड़े व्यंग के साथ में कहा, प्रचार के लिए तो यह नरक है। उसने पहली बार मुझसे सच कहा। मैं उससे सहमत हूं। मैंने देखा कि आप बुराई से धीरे धीरे संबंध नहीं तोड़ सकते हैं। यदि आप संसार के साथ रहेंगे तो वे आपको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं वहां से बाहर आ गया और फिर कभी वहां नहीं गया। मेरे प्रिय मित्रों, मैं नहीं मानता कि आप परमेश्वर की संतान होकर पाप में रहेंगे। आप में मसीह का स्वभाव है। आप प्रभु यीशु से जुड़े हुए हैं। उसने यहां एक बार दुख उठाया है। वह अब दुख नहीं उठा रहा है। वह आपकी सहायता कर सकता है और वह आपकी सहायता करना चाहता है। उसने अपनों में अंतर्वास हेतु पवित्र आत्मा भेजा है। हमें विश्वासियों की देह में जोड़ने के लिए बपतिस्मा दिया गया है और अब पवित्र आत्मा से भरकर हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। जी हाँ, हम अपनी शक्ति में असमर्थ हैं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ में हम जी सकते हैं, पाप से लड़ सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। क्या आज आप पाप में जीवन जी रहे हैं? क्या आप उससे बाहर आना चाहते हैं? यदि आप असमर्थ हैं तो प्रभु के पास आ जाएं। पहला पत्रस 4:5 में लिखा हुआ है, पर वे उसकी जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। ध्यान दीजिए, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है। एक दिन प्रभु यीशु सबका, जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि इस संसार के बाद कोई जीवन नहीं है तो आप संदेह में हैं। आप गलती कर रहे हैं। आपके जीवन में ये बातें होने वाली है कि जीवितों और मृतकों का न्याय होगा। क्या वह विश्वासियों का भी न्याय करेगा? निश्चय ही करेगा, परंतु उद्धार के लिए नहीं। वह विश्वासियों को पाप करके जाने नहीं देगा। आप बच नहीं सकते हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर अपनी संतान की ताड़ना करता है, अतः अविश्वासी सावधान। उसने कह दिया है कि एक दिन वह न्याय करेगा। इसलिए मुझे और आपको इसका सामना करना अवश्य है। पत्रस 4 अध्याय उसके 6 पद में कहता है, पहला पत्रस 4 अध्याय के 6 पद में, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। ध्यान दीजिए, यहां पर शब्द है इसीलिए। आने वाले न्याय के दिन के कारण ही सुसमाचार सुनाया गया था। यदि मनुष्य सुसमाचार न सुने या सुनकर प्रतिक्रिया न दिखाए तो परमेश्वर कहता है वे पापों और अपराधों में मरे हुए हैं और उनका न्याय किया जाएगा। परंतु यदि वे प्रभु यीशु को ग्रहण कर लें, वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मा में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु यीशु कहता है कि जिसने उसका वचन सुनकर परमेश्वर पर विश्वास किया उसके पास अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रियो, लाजर ने यीशु की मृत्यु पर इसी बात को अधिक स्पष्ट कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 25 और 26 पद में यीशु ने उससे अर्थात मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। कहने का अर्थ यह है कि हम पापों में मरे हुए थे। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम सब आत्मिक मृत्यु के शिकार थे। आगे पौलुस कहता है 2 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, जिनमें पहले तुम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मेरे प्रियो, पत्रस भी यही कहता है, सुसमाचार प्रचार के कारण 2 बातें होती हैं। कुछ लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं और वे परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं, अनंत काल का जीवन। कुछ लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते हैं, वे पापों में मरे हुए हैं और वे परमेश्वर के लिए अनंत काल तक मृतक हैं, अर्थात उनका संबंध परमेश्वर से नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप पाप में जीवन जीकर परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे वह आपके लिए दे देगा, तो यह आप बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। यदि आप परमेश्वर के संबंध में आना चाहते हैं, संपर्क में आना चाहते हैं, तो आप अपने पापमय जीवन को छोड़ दें, अपने मनों को फिरा लें। और यही कारण है कि पत्रस कहता है कि जो कोई सुसमाचार को ग्रहण करता है अनंत जीवन पाता है। पहला पत्रस 4 अध्याय के 7 पद में आगे लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। यहां पर वह कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। मेरे प्रियो, यह बात उसी दिन से मान्य है जिस दिन प्रभु यीशु का स्वर्गरोहण हुआ था। पौलुस भी कहता है कि प्रभु का आगमन निकट है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। मेरे प्रियो, पत्रस कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। एक दिन परमेश्वर इस संसार को रोक देगा जब वह न्याय करेगा। जी हाँ, वह अपनों को इस संसार से उठा लेगा और विश्वासियों के जीवन में सुधार के बहुत से काम होंगे। वे प्रभु यीशु के न्याय के आसन के समक्ष एकत्र होंगे, जो उद्धार नहीं प्रतिफल के लिए होगा। परमेश्वर के लिए उनका जीवन परखा जाएगा। यह एक और कारण है कि हमें परमेश्वर के लिए जीवन जीना है। हमारा न्याय होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? पत्रस कहता है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी अर्थात बुद्धिमान विश्वासी बनो। बुद्धिमान विश्वासी बाइबल का पूर्ण ज्ञान रखता है एवं सही रीति से अध्ययन करता है। 10 में से एक मनुष्य स्वीकार करता है कि उसे बाइबल का बहुत कम ज्ञान है। वह कहता है, मैं जितना अधिक बाइबल अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक देख पाता हूं कि मैं वचन को बहुत कम जानता हूं। परंतु एक बुद्धिमान संयमी विश्वासी जितना अधिक बाइबल का ज्ञान प्राप्त करता है उतना अधिक प्रयास करता है और आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, आज दुख की बात तो यह है कि हम अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं परंतु बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन को जानना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते और यही कारण है कि आज हम अंधेरे में हैं। विश्वासी को इस दुष्ट संसार में भी बुद्धिमान होना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, मत्ती रचि सुसमाचार 10 अध्याय उसके 16 पद में, सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। यदि आप सांप की नाई चतुर नहीं हैं, तो दूसरा सांप आपको डस लेगा। निश्चय जानिए कि आप नाश होंगे। तब वह कहता है, प्रार्थना के लिए सचेत रहो। दूसरे शब्दों में आपकी प्रार्थना में प्रभु के आने की आशा हो। आज हमारी प्रार्थनाएं, प्रार्थना सभाएं मृतक हैं, क्योंकि वे प्रभु की ओर नहीं निहार रहे हैं। वह जीवित मसीहा है। हमें उससे आज बातें करना है, क्योंकि हम सदा उससे बातें करते रहेंगे। न्याय के दिन वह हमसे बातें करेगा। मुझे इसका आश्वासन नहीं है, परंतु मैं इसकी प्रतीक्षा में हूं कि वह मुझसे बातें करे। पहला पत्रस 4 अध्याय के 8 पद में हम देखते हैं, लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यहां पर वह कहता है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मेरे प्रियो, पत्रस हम विश्वासियों के आपसी प्रेम के बारे में कह रहा है। नीति वचन 10 अध्याय के 12 पद में लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते हैं। बैर भाव से कलीसिया में भी झगड़े उत्पन्न होते हैं। एक गुट दूसरे गुट की बुराई करता है और ये दोनों गुट किसी और की बुराई करते हैं, परंतु प्रेम इन सब को ढांप देता है। मुझे एक बार किसी पास्टर ने बताया कि उसके सिर पर बालों की एक लट खड़ी रहती है, जिसको नापसंद करने के कारण उसकी गायन मंडली ने कलीसिया त्याग देने की धमकी दी। मेरे प्रियो, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यदि उनके मन में प्रेम होता तो उसकी यह चोटी उन्हें परेशान नहीं करती। आज यही बात कलीसियाओं में हम देखते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए हम पास्टर को, कलीसिया के प्रचारक को स्थानांतरण करने की मांग करते हैं। हम धमकी देते हैं क्योंकि हमारे अंदर में वो प्रेम नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस प्रेम को पाएं, हम उस प्रेम को अधिक दिखाएं, ताकि हमारा मसीही जीवन, एक विश्वासी जीवन कायम हो सके और हम मसीह के गवाही बनने पाएं। क्योंकि हमारा प्रेम कई बड़े पापों को ढांप देता है, हमारे जीवन में आनंद और खुशी फिर से ले आता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज की इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप अपने जीवन में इस प्रेम की बातों पर विचार करेंगे, अपने उद्धार के बारे में विचार करेंगे, पापमय जीवन के बारे में विचार करेंगे, ताकि आप एक दिन परमेश्वर से बातें कर सकें, उसके समक्ष खड़े होने पाएं। क्या आज आप इन सारी बातों पर विचार करेंगे? मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।